तो मैं ये कह रहा था, जैसे बॉम्बे में भी मैंने बताया था कि हम धाम में जब जाते हैं तो बहुत सारी योजना बनाते हैं कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, लेकिन धाम में वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है, और उस भगवान की इच्छा के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए। फिर जब आप मेरे घर पे आते हो तो आपको कहाँ बिठाना है, कहाँ बिठाना है, कहाँ खिलाना है, कहाँ सुलाना है, ये सब यजमान तैयार करता है, यजमान सोचता है उसके बारे में। हम सोचेंगे हमको यजमान के उस बेडरूम में सोना है, तो वो नहीं हो सकता है। जहाँ यजमान की इच्छा होगी वहीं पर सुला देंगे। उस तरह से वातावरण, तापमान, निसर्ग, ये सारी जो योजना है वो भगवान के हाथ में है। हमें ये कृतज्ञता होनी चाहिए कि हमें धाम में भगवान ने कम से कम शरीर से क्यों ना हो प्रवेश दे दिया है। द लॉर्ड हैज अलाउड अस टू एंटर फिजिकली एटलीस्ट इन द धाम। इसलिए एक बार मैं श्री वृंदावन धाम की यात्रा का आयोजन किया था 1994 में, तभी हमारे यात्रा में 425 लोग हुआ करते थे, तो उस समय की वो हाईएस्ट रिकॉर्ड था। आज जो यात्रा जाएगी कार्तिक में उसमें केवल 7,000 लोग जा रहे हैं, उसमें 2,000 लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन उस समय 94 में 425 मतलब बहुत बड़ा नंबर था। 8 बसेस हुआ करती थी, 8 बसेस। आज कितनी बसेस हो करती, 200 बसेस होती है आज। एनीवेज, तो 8 दिन 8 बसेस की 12 दिन की यात्रा समाप्त करके हम लौट रहे थे, और गुरुदेव हमारे ही बस में आए बैठने के लिए, और उन्होंने पूछा, सर विश्वरूप कैसी यात्रा रही, आपका विचार क्या है? तो मैं यात्रा का आयोजक था, तो मैंने एक मैनेजरियल उत्तर दिया उसका कि अगर सब लोग जल्दी चलते और सब लोग समय पर आते और सब लोग जो बताया हुआ वो सुनते तो हम लोग बहुत जगह जा पाते जो हमने योजना बना के रखी थी। जितना हमने प्लानिंग किया था उसमें बहुत जगह मिस हो गई, तो अगर हम समय पर जाते और सब कुछ बराबर सुनते, समय पर चलते और ज़रा तेज चलते दो जगह के बीच में, तो हम बहुत जगह जा पाते। तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया एक्चुअली लेकिन गुरुदेव थोड़ा सा गंभीर हो गए इस मामले में। मैं ये नहीं कह सकता क्रोधित हो गए, लेकिन थोड़ा गंभीर हो गए उनका चेहरा देखे। उन्होंने कहा कि एक यात्री को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, एक यात्री को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए कि हमें इतनी जगह जाने को मिला, कितनी जगह नहीं जाने को मिला जो योजना में था, ये सोचना गलत है, क्योंकि धाम में सारा जो नियोजन है वो भगवान करते हैं। आज से लेकर 4 और 5 दिन में हम लोगों को कहाँ कहाँ जाके बिठाना है और कहाँ कहाँ कथा सुनाना है और क्या क्या सुनाना है, ये सब उनके हाथ में है। हम तो केवल उनके हाथ के कठपुतली है, और कदम कदम पर हमारी योजना बदली हो सकती है। यही भगवान दिखाना चाहते हैं, यही भगवान दिखाना चाहते हैं कि धाम का नियंत्रक मैं हूं यानी भगवान, और धाम के नियंत्रक हम नहीं हैं। तो यह हमको अगर अनुभूति हुई इस यात्रा के अंत में, हो सकता हमारी यात्रा सफल हो गई। इफ यू अंडरस्टैंड दैट ही इज द कंट्रोलर, एक काम करो इसको आप शिफ्ट करो। हाँ, कोई जरा जल्दी हेल्प करे क्विकली। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले मैं हमारी जो यात्रा कमेटी है, भावग्राही प्रभु, संजय पांडे, श्री गोपीकांत प्रभु सुन रहे हैं ना सब लोग? नहीं, सुनने के लिए भी वो प्रिय नहीं है, बिजी है बहुत। गोपीकांत प्रभु, भावग्राही प्रभु, हरि बोल। संजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। इन सबका और राजेंद्र कृष्ण प्रभु कहाँ पर हैं? हरि बोल। ये सबका हम बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों के योजनाबद्ध कार्यक्रम से आप सब लोग यहाँ पहुँच पाए ठीक से। और लास्ट मोमेंट पे हम लोग गंगा जी जाने वाले थे, लेकिन इतनी घनघोर वर्षा हुई कि हम लोगों ने एन मौके पे इमरजेंसी में ये हॉल बुक किया, इसलिए इन लोगों का बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। तो आज की जो जगह है वहाँ पर हम कल ज़रूर जाएंगे, लेकिन इतना ही करेंगे कि उसकी कथा यहाँ पर करेंगे और कल केवल दर्शन करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम सब लोग गुरु महाराज की असीम कृपा से श्री मायापुर धाम में बैठे हुए हैं। श्री गुरुदेव और परम गुरुदेव एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्होंने जो तपस्या की, जो कष्ट झेला, जो भगवान के चरणों में इच्छा व्यक्त की कि बद्ध जीवों को धाम का निवास होना चाहिए, इसलिए कम से कम 50 साल पहले ये जगह को लिया, छोटी जगह को लिया। ऐसे कई फोटो हैं, केवल उसमें मंदिर की एक बिल्डिंग है, बाकी सब जंगल ही जंगल है। और प्रभुपाद जी उस कंस्ट्रक्शन के बीच में से उतर रहे हैं, ऐसे कई फोटोग्राफ्स हैं। और जान उनकी कृपा से 50 साल के बाद में केवल 700 एकड़ जगह है, 700 एकर्स। और उसमें दो तो बड़े बड़े मंदिर हैं, कई रहने की व्यवस्था है। ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर 10,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है, यात्रियों की, और कम से कम 2,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। और कई बिल्डिंग्स है जिसमें विद्यालय है, एक गुरुकुल है, दो स्कूल है, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत के विद्यापीठ है, कई प्रकार के कोर्सेस यहाँ पर, भगवान के विग्रहों की सेवा करने वाले कोर्सेस और कई प्रकार के कोर्सेस यहाँ पर सिखाए जाते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और हम इसको मंदिर नहीं कहते हैं, एक शहर है, दिस इज़ अ सिटी, सिटी ऑफ गॉड। बाकी सब मंदिर होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शहर है और इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी व्यवस्था है यहाँ पर। तो ये सारी भव्यता जो है ये गौरांग महाप्रभु की हम पर कृपा है। तो श्री नवद्वीप धाम जो है बहुत इसमें ठीक है थोड़ा कम कर दो आवाज बस थोड़ा। तो भौतिक दुनिया में भगवान ने जो निर्माण किया है उसके अंदर कई प्रकार के लोक हैं, और 14 प्रकार के लोक होते हैं, उसके मिलकर एक ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं जिनके मालिक महाविष्णु होते हैं, और महाविष्णु पूरे भौतिक जगत के इंचार्ज हैं। उनका निर्माण भगवान नारायण से होता है, और भगवान नारायण भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है उसमें रहते हैं। भौतिक जगत का मतलब है जहाँ पर जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा होता है, और आध्यात्मिक जगत का मतलब है जहाँ पर जन्म मृत्यु नहीं होता है। तो महाविष्णु का निर्माण नारायण से होता है, नारायण का निर्माण संकर्षण से होता है, संकर्षण का निर्माण चतुर्व्यूहों से होता है, चतुर्व्यूह जो है वो बलराम जी से निर्माण होता है, और बलराम जी का निर्माण जो है वो कृष्ण भगवान से होता है। और कृष्ण भगवान एतेच अंशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सब चीज़ के निर्माता भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो जहाँ रहते हैं वो उसे गौलोक धाम कहते हैं, और गौलोक धाम के नित्यानंद प्रभु जी ने बताया है, नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं, उन्होंने जीव गोस्वामी को नवद्वीप की यात्रा करवाई थी, और वो जो यात्रा है उसका संकलन यानी कि कंपाइलेशन ठाकुर भक्ति विनोद जी ने नवद्वीप महात्म्य इस ग्रंथ में किया है। तो उसमें वो बताते हैं, अच्छा अपनी कथा में एक नियम है, अगर आपको नींद आती होगी, थक गए होंगे, तो आपको खड़ा रहना है, लेकिन सोना नहीं है। जिनको नींद आती है, नींद आना स्वाभाविक है, आपने इतना लंबा सफ़र किया है तो नींद आ सकती है, लेकिन आज का जो हमारी कथा है वो एक बेसिक कथा है। आज के बेसिक पॉइंट्स आपको समझ में आए तो आगे की सारी कथाएँ आपको समझ में आएगी। जैसे कि कोई स्टोरी होती है ना, उसके अंदर एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक हीरोइन की माँ होती है, एक हीरो के पिताजी होते हैं, ऐसा बहुत सारे किरदार होते हैं। लेकिन अगर आप पिक्चर को 15 मिनट के बाद में चालू किया ना, तो आपको समझेगा नहीं कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलन है, कुछ समझेगा नहीं। तो शुरू शुरू में जो फिल्म वाले होते हैं ना, वो ऐसे प्रसंग दिखाते हैं कि इसमें आपको पता चलता है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये उसकी माता है, ये विलन है, तो आगे की स्टोरी आपको पूरी समझ में आती है। तो आज हमारा प्राथमिक भाग है हमारे स्टोरी का। तो गौलोक धाम के स्वामी श्री कृष्ण भगवान गौलोक धाम गौलोक वृंदावन में रहते हैं, और नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि गौलोक धाम जो है इसका दो प्रमुख भाव होते हैं। पहला भाव है माधुर्य भाव, प्रेम का भाव जो भक्तों के बीच में होता है, राधा रानी और कृष्ण के बीच में होता है, गोपियों और कृष्ण के बीच में होता है, सखाओं और कृष्ण के बीच में होता है, माता पिता और कृष्ण के बीच में होता है। और एक भाव होता है औदार्य, औदार्य का मतलब होता है उदारता, भगवान का जो उदारता का भाव है वो उसमें प्रधान होता है। तो ये दो भाव जो है, ये जब पृथ्वी प्रकट होते हैं, गोलोक भाव के जो भाव है वो भी पृथ्वी पर प्रकट हो रहे हैं भगवान की दया से, क्योंकि तो भगवान हम सबको आकर्षित करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए यही भाव जो है ये धाम के रूप में प्रकट करते हैं। जब माधुर्य भाव प्रकट होता है, जब प्रेम का भाव प्रकट होता है, तो उसको श्री वृंदावन धाम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री वृंदावन धाम की। और जब ये औदार्य भाव, भगवान का जो उदारता का भाव है, ये जब प्रकट होता है, तो उसको श्री नवद्वीप धाम कहते हैं। नवद्वीप धाम की। तो अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं? नवद्वीप धाम में बैठे। तो ये नवद्वीप धाम जो है, ये नौ द्वीप यानी 9 आइलैंड्स, 9 टापुओं से बना हुआ है। हाँ, ये 9 टापू कैसे बने हैं? श्री गंगा जी की 16 नदियाँ हैं, ये 16 नदियों से जब विभाजन होता है, जब मिल जाते हैं, फिर विभाजन होता है और फिर मिल जाते हैं, 2 नदियाँ जब अलग होती हैं फिर मिल जाती हैं, तो उससे टापू बनता है, बेट बनता है, द्वीप बनता है। तो ऐसे 16 नदियों के विभाजित होने से और मिलने से यहाँ पर 9 द्वीप बने हुए हैं। कितने बने हैं? उनके नाम इस प्रकार से हैं: अंतरद्वीप, सीमांत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, कोलद्वीप, मध्यद्वीप, ऋतुद्वीप, जानुद्वीप, मोदद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप। इस प्रकार के 9 द्वीप बन जाते हैं। और बहुत विशेष बात यह है, अगर आप लिखते रहेंगे तो जगे रहेंगे, सुनते रहेंगे तो सो जाएंगे, इसलिए आप लिखते रहिए। भगवान के अनंत कृपा से जो प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में शिक्षा देते हुए बताया है कि भक्ति की 9 प्रकार की विधियाँ होती हैं, नवधा भक्ति कहते हैं उसको, वो नवधा भक्ति अपने आप में परिपूर्ण होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधियाँ भक्ति की हैं। तो ये जो एक एक द्वीप है, ये एक एक विधि का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक द्वीप एक नवदा भक्ति में से एक विधि को प्रधान रूप में प्रकट करता है। तो अंतरद्वीप में आत्मनिवेदन ये भावना प्रकट होती है, सीमांत द्वीप में श्रवणम, गोद्रुम में कीर्तनम, मध्य द्वीप में स्मरणम, कोलद्वीप में पाद सेवनम, ऋतुद्वीप में अर्चनम, जाह्नुद्वीप में वंदनम, मोदद्रुम द्वीप में दास्य और रुद्रद्वीप में सख्य। ये रुद्रद्वीप में सख्य ये प्रकट हुआ है, लेकिन पहले द्वीप में आत्मनिवेदन है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? अंतरद्वीप में बैठे हुए हैं, जिसको मायापुर भी कहते हैं। और एक विशेष बात है इन नौ द्वीपों की कि ये श्री वृंदावन धाम, श्री मायापुर नवद्वीप धाम और जगन्नाथपुरी धाम, ये तीनों अभिन्न हैं और तीनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। और न केवल ये तीनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, यानी कि आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ पर भी जगन्नाथपुरी मायापुर बसे हुए हैं, अगर मायापुर आ रहे हैं आप तो इधर भी जगन्नाथपुरी वृंदावन बसे हुए हैं, और जगन्नाथपुरी जाएंगे उधर भी वृंदावन और मायापुर बसे हुए हैं। इसलिए सबसे पहली बात हमको समझना ज़रूरी यह है कि वृंदावन, मायापुर, नवद्वीप और जगन्नाथपुरी, इसको अलग अलग कभी मानना नहीं चाहिए। इसको अलग मानना भी अपराध माना गया है। तो इसमें अलगता क्या है कि ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक दृष्टि से ये अलग जगह पर है, एक उड़ीसा में है, एक यूपी में है और एक बंगाल में है, और अलग अलग लीला वहाँ पर प्रकट हुई है, लेकिन एसेंशियली सार रूप में ये तीनों धाम जो है वो एक रूप है। वो तीनों धाम में भगवान की वही कृपा उपलब्ध है, अलग अलग रूप से उपलब्ध है। तो ये जो नौ द्वीप है इसमें अंतरद्वीप में गोकुल प्रकट है, जहाँ पर श्री कृष्ण को जन्म होने के बाद में लाया गया था, जहाँ पर नंद बाबा यशोदा नंदगांव से आकर रहे थे। जन्म नहीं हुआ था, जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन वहाँ पर उनको जमुना पार करके लाया गया। तो वो जो गोकुल है वो अंतरद्वीप और गोकुल सेम है। सीमांत द्वीप जो है वो जहाँ पर हम कल जाएंगे वहाँ पर जगन्नाथपुरी प्रकट हुआ है। बहुत विशेष अद्भुत बात है ये, जो हम पूरी विस्तार में आपको कल समझाएंगे। गोद्रुम द्वीप जो है वो नंदगांव है, जहाँ पर नंद बाबा का ओरिजिनल घर था, जहाँ से वो गोकुल आए थे। मध्य द्वीप जो है वो नैमिषारण्य है, जहाँ पर सूत गोस्वामी ने 88,000 संतों के लिए भागवत की कथा की थी। कोलद्वीप बहुत इंटरेस्टिंग धाम है। कोलद्वीप में सत्ययुग में एक पहाड़ से वरादेव प्रकट हुए थे, जब वरादेव का अवतार भी नहीं हुआ था। उसके पहले एक भक्त के भजन से प्रसन्न होकर वराहदेव वहाँ अवतरित हुए थे। इसलिए उनको जब अवतरित हुए तो उनको पुकारा गया, खोला खोला खोला, तो नाम पड़ गया कोलद्वीप। कुलिया पहाड़ भी कहते हैं उसको, और वो श्री गोवर्धन पर्वत का प्रतीक है। वहाँ पर श्री गोवर्धन पर्वत प्रकट हो गए, उसको वराह क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद में ऋतुद्वीप नाम का जो जगह है वहाँ पर राधा कुंड प्रकट हो गया है, गुप्त रूप में राधा कुंड वहाँ प्रकट है। जाह्नुद्वीप में भद्रवन प्रकट है। मोदद्रुम द्वीप में दो चीज़ प्रकट है, एक है प्रभु रामचंद्र की अयोध्या और दूसरा है भांडीरवल। ये सब ब्रज के 12 वन हैं, इसमें से अलग अलग वन अलग जगह पर प्रकट हुए हैं। और लास्ट जो है रुद्रद्वीप, ये शिवजी का धाम है, शिवजी का क्षेत्र है वो, शिव क्षेत्र। तो ऐसे ये नवद्वीप का गौरव है, अगाध गौरव है। हाँ, जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना आपको उसका महिमा समझ में आएगा। अब ये जो नवद्वीप धाम है इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण गौलोक धाम में एक बार राधा रानी कृष्ण को मिलने जा रही थी, और जब जा रही थी मिलने के लिए बहुत सखियों को लेकर, तो जहाँ पर कृष्ण थे वहाँ पर वो पहुँची, तो उस कुंज में उसी का भाई श्रीदामा उस कुंड के गेट पर रक्षा कर रहा था। तो राधा रानी ने उसमें अंदर जाना, प्रवेश करने का प्रयास किया, तो श्री दामा भैया ने उनको रोका, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? भगवान का आदेश नहीं है। इसका कारण ये था कि भगवान की और एक सखी है विरजा देवी, उसके साथ में वो संग कर रहे थे गुप्त रूप में, प्राइवेट में। तो जब भगवान को अंदर पता चला कि बाहर गेट पे झिकझिक हो रही है, तो विरजा नदी जो है, विरजा जो गोपी है, वो अदृश्य होकर नदी बन गई और भगवान भी गायब हो गए। फिर सुदामा से झगड़ा करके वो अंदर चली गई, तो उसको कोई नहीं मिला, तो परेशान हो गई, वापस चली गई। दोबारा उसको खबर मिली कि वापस वो विरजा नदी को, विरजा गोपी को मिल रहे हैं, तो फिर वहाँ से क्रोध में आई वहाँ पर वो, और फिर सुदामा ने रोका, तो सुदामा को उसने शाप दिया कि तुम बड़े दुष्ट हो, मेरे भाई ज़रूर हो लेकिन दुष्ट हो, तुम राक्षस बन जाओ, भौतिक दुनिया में चले जाओ। तो सुदामा ने भी अपनी बहन राधारानी को शाप दिया, तुम भी अपने प्रियतम से 100 साल का विरह उपभोगने के लिए पृथ्वी पर जाओगी, तुम भी पृथ्वी पर जन्म लोगी और 100 साल तक अपने प्रियतम से दूर रहोगी। तो दोनों को शाप देने के बाद थोड़ा होश आया, रहे हम लोग क्या बोल रहे हैं। फिर राधा रानी को लगा कि हमारे कृष्ण जो हैं वो कई गोपियों को मिलते हैं, तो मैं भी ऐसा जगह बनाऊंगी तो केवल मुझे को मिलेंगे। तो वो पृथ्वी पर आकर उन्होंने गंगा और जमुना के बीच में एक विशाल क्षेत्र जो है, जो आज के तारीख में 168 स्क्वायर माइल्स है, हाँ, उसकी परिक्रमा जो है परीघ बोलते हैं, परीघ सरकमफरेंस 168 यानी 168 माइल्स, जिसका जो व्यास यानी डायमीटर जो है वो 56 माइल्स है, जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है, हाँ हाँ पक्का ना, डायमीटर कितना है 56, तो रेडियस कितना हो गया 28, मतलब आप जग रहे हो, थैंक यू। तो 28 किलोमीटर की त्रिज्या है उसकी, व्यास 56 किलोमीटर का है, और परीघ जो है वो 168 मील का है। ऐसे क्षेत्र में उन्होंने अपने हाथ से एक बहुत दिव्य महल बनाया, दिव्य वन बनाया, जिसमें अपने हाथ से पेड़ लगाए, पौधे लगाए, बेली लगाए, फल फूल लगाए, नदियाँ, झरने, उपवन, बगीचे, पहाड़ से सुंदर व्यवस्था की उसने। अनेकों पंछियों को बुलाया जो वीर अलग अलग ध्वनि निकाल कर भगवान को प्रसन्न कर सके। ऐसा सुंदर फल फूलों से, वेलियों से, सुगंध से, कदर तरह के रंगों से भरा हुआ एक अद्भुत धाम बनाया उन्होंने, और बहुत सखियों को बुलाया। और फिर ये तैयार होने के बाद वो स्वयं बीच में बैठ गई और बांसुरी को लेकर एक विशेष राग में वो गायन करने लगी। आप सब जानते होंगे कि भगवान कृष्ण बांसुरी में बहुत एक्सपर्ट हैं, मुरली मनोहर, बंसीधारी, लेकिन उनके भी एक गुरु हैं जिनसे उन्होंने बंसी सीखी है। वो कौन है उनके गुरु, हाँ आवाज़ नहीं आ रहे, राधा रानी, राधा रानी की, ये जमुना किनारे में बैठकर उन्होंने उनको बंसी सिखाई थी ब्रज में। तो वो उन्होंने प्रेम से बंसी बजाई राधा रानी, तो भगवान भाग के आए वहाँ पर, वो ध्वनि को सुनकर उनका हृदय इतना आकर्षित हो गया, वो भाग के वहाँ पर आए और उन्होंने राधा रानी को आकर मिले। उन्होंने कहा कि इतना सुंदर आपने ध्वनि बजाया, मेरा दिल तो पिघल गया। फिर देखा कितना सुंदर वन आपने बनाया है, मैं अभी आपके साथ ही रहूँगा, मैं ये वादा करूँगा कि मैं अलग अलग सखियों को यहाँ पर लेके आऊँगा, अलग अलग पंछियों को, अलग अलग पक्षियों को, अलग अलग जीवों को यहाँ लेके आऊँगा और इस धाम की शोभा बढ़ाऊँगा, सारे तीर्थों को यहाँ बुलाऊँगा, उनको भी यहाँ पर निवासित करूँगा, हर प्रकार से इस धाम को दिव्य बनाऊँगा। और ये धाम श्री वृंदावन से अलग नहीं होगा, ये नव वृंदावन के रूप में माना जाएगा। यहाँ पर 9 द्वीप होंगे, इसलिए नवद्वीप नाम से भी जाना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नवद्वीप जो है ये राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है, ये वृंदावन से अभिन्न है। एक ही इसमें अंतर है कि यहाँ पर सारे अपराध माफ़ है, इसलिए उसको औदार्य धाम कहते हैं। और उदार धाम का मतलब है यहाँ पर उदार हृदय से भगवान बैठे हुए हैं, हर प्रकार के अपराध माफ करते हैं, केवल एक अपराध छोड़कर। वो कौन सा अपराध? एक बार जोर से बोलिए। वैष्णवों का अपराध इस विश्व में कहीं माफ नहीं होता है, चाहे मायापुर हो, वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो। लेकिन वैष्णवों का अपराध छोड़कर बाकी सारे अपराध जो हम धाम के प्रति करते हैं या भगवान के प्रति करते हैं, प्रणाम नहीं करते उनको या कुछ गलती करते हैं उनकी पूजा में, तो सब अपराध माफ हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कहा गया है कि सबसे पहले अगर कोई धाम की यात्रा करनी है तो हमको मायापुर आना चाहिए, क्योंकि ना धाम में भी रहने की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि धाम में कैसे रहा जाता है, हाउ टू स्टे इन धाम, इसका भी ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले पहले अगर आप वृंदावन ले जाएंगे आपको, तो आपके हाथ से इतनी सी भी गलती हो गई तो हजारों गुना लाखों गुना आपको उसका दंड भोगना पड़ता है। धाम का महात्म्य है वो। धाम में जब आते हैं तो हर चीज़ मैग्नीफाई हो जाती है, जो भी करते हैं आप धाम में अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा हजारों गुना परिणाम होता है, लाभ मिलता है, और बुरा करेंगे तो उसका भी हजारों लाखों गुना नुकसान होता है। ये धाम की महिमा है। लेकिन यहाँ पर एक विशेषता है, यहाँ पर भगवान के भजन में आप जो भी करेंगे उसका आपको हजारों लाखों गुना लाभ मिलेगा। लेकिन एक वैष्णव का अपराध छोड़कर बाकी कुछ गलतियाँ करेंगे तो माफ़ की जाएगी, दैट इज़ अ बेनिफिट। तो आप में से श्री मायापुर में सबसे पहली बार कितने लोग आए हैं? हरी बोल, जय हो। नवद्वीप मायापुर में सबसे पहली बार, इसमें से वृंदावन धाम में कितने लोग गए हैं? हरे कृष्णा। तो बहुत अधिक लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो आप सबको बधाई है कि आपको गौरांग महाप्रभु की कृपा से यहाँ पर प्रवेश मिला। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अभी आपको शरीर से प्रवेश मिला है, अभी आपको सबको भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आत्मा से भी प्रवेश मिले, स्पिरिचुअल एंट्रेंस भी मिले आपको, हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। शरीर से तो यहाँ पर गधा भी रहता है, सुअर भी रहता है, बाहर से भी आता है जाता भी है। भागवत में लिखा है कि अगर भाव नहीं है हमारा सही तो यहाँ पर आना जाना स एव गोखरम, यानी गाय, गधा, ऊंट और सुअर, इनके जैसा हमारा आना जाना होगा अगर हमारा भाव सही नहीं है। इसलिए यात्रा में जो है भाव होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात हमने मुंबई में भी कही थी कि हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने को नहीं आए हैं। पिकनिक में क्या होता है, अपनी सुविधाओं का बहुत ध्यान होता है, बहुत सारी योजना अपनी सुविधाओं की होती है, मुझे क्या मिलेगा, ये नहीं मिला, अरे क्या, अरे इधर कितना कीचड़ है, अरे कितनी वर्षा हो रही है, क्या ये मौसम था क्या आने का, ये क्या प्लानिंग सही नहीं है, ऐसा नहीं है, कीचड़ कितना यहाँ पर, कितना रास्ते में खड्डे हैं। जब अपनी सुखों के बारे में सोच के आते हैं ना तो वो पिकनिक हो जाती है। फिर धाम में भी आए होंगे आप और भाव आपका ऐसा होगा, धाम में आकर भी पिकनिक हो जाएगी आपकी। और पिकनिक में होने से बहुत सारे कर्मों में हम फंस जाते हैं, क्योंकि स्वयं को केंद्र स्थान में रख के हम पिकनिक मनाते हैं। लेकिन यात्रा जो होती है उसमें अपने को बाजू में रखकर, केवल भगवान को केंद्र स्थान में रखकर, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके आनंद के लिए जो करते हैं उसको यात्रा कहते हैं। और ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं, से सब स्थाने हेरी बो आमी प्रणयी भक्त संगे। ये सब आप जैसे प्रामाणिक भक्तों के संग में जाते हैं हम लोग, जगह जगह जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ की रज में बैठते हैं, संकोच नहीं करते कि अरे अरे हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा। जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर रज में बैठेंगे और वहाँ बैठकर प्रेमी भक्तों के संग में उस जगह पर क्या लीला हुई उसके बारे में सुनेंगे। वैसा करने से अनंत रूप में आत्मा की शुद्धि होती है और हम भगवान का प्रेम और कृपा प्राप्त करते हैं, इसलिए हम धाम में आते हैं। तो धाम में आने का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है कि हम धाम के जो अधिष्ठात्री भगवान हैं, जैसे कि यहाँ के भगवान गौरांग महाप्रभु हैं, वृंदावन के राधा कृष्ण हैं, जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान हैं, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेने के लिए हम लोग आते हैं। अरे मायापुर में प्रसाद बढ़िया मिलता है इसलिए नहीं जाते, प्रसाद तो सब जगह पर दिव्य ही होता है, हम लोग भौतिक दृष्टि से देखते हैं उसको, लेकिन हम जाते हैं उस धाम की जो देवता है, देव है भगवान, उनका चरणों का आश्रय ग्रहण करने के लिए,
to take shelter of the lotus feet of the master of the dham. इसी भाव से हमको आना है यहाँ पर, और अगले कितने भी मिनट, कितने घंटे, कितने दिन भगवान ने हमको यहाँ पर लिखे हैं, उतने सारे समय हम इस भाव में रहेंगे तो हम आत्मा से यहाँ प्रवेश कर सकते हैं. नहीं तो हमारा शरीर जो है ये मल मांस वाला, रक्त मांस पेशी सब भरा हुआ है इसमें, ये केवल यहाँ घूमेगा और चला जाएगा. आत्मा का प्रवेश तब होगा जब हम हृदय से शरण लेने के भाव से आएंगे, प्रेम से एकाग्रता से लीला का श्रवण करेंगे, कोई गॉसिप नहीं करेंगे, दुनियादारी की बातें नहीं करेंगे, केवल भगवान पर ध्यान रखेंगे, भगवान के विषय में क्या हो रहा है उस पर चिंतन करेंगे, क्या सुना है उसका रिवीजन करेंगे, आंखों से भगवान को देखेंगे, मुख से भगवान के नाम का जप करेंगे, उनकी लीलाओं का रिवीजन करेंगे, उनके ही विचार में रहेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा से प्रवेश इस धाम में होगा. और हम सब लोग चाहते हैं और हम शुभकामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों का आत्मा से प्रवेश हो. और अगर आपके साथ में कोई लोग यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं, उनको आप जगाओ, उनको बताओ कि हम लोग वो सारी बातें करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं. वो सारी बातें करने के लिए कई घंटों और कई साल हमने बम्बई में बिताए हैं, हाँ, मुंबई में, सावंतवाड़ी में और पूना में और काठमांडू में, सब जगह पर हमने कई साल बिताए हैं और वो सारी बातें की हैं जो करने नहीं चाहिए थी, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं उस वेग को रोकने के लिए. वो वेग कौन सा है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जुवा वेगम उधर उपस्थ वेगम. इतने सारे वेग हमारे अंदर हैं, उनको रोक कर हमारे सारे वेग भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए. सारी जो दुनियादारी की बातें हैं, बॉम्बे की, शहर की, इधर की उधर की, जो हमको हमेशा व्यस्त रखती है, उन सबको छोड़कर हम लोग यहाँ पर आए. और कम से कम एक साल में एक बार हमारा सारा व्यवसाय, नौकरी, परिवार, जितने भी हमारे बंधन हैं, सब छोड़कर हमें भगवान के धाम में आना चाहिए, ताकि हम जीवन के उद्देश्य को कुछ समय के लिए कोई ना हो फुल टाइम करें. फुल टाइम मुंबई में कैसा होता है, सुबह 2 घंटा जब करते हैं फिर 22 घंटे लगे रहते हैं काम में, याद भी नहीं आता है. माला जो है माला पे जाती है, 16 माला हो गई तो मतलब बड़ा बोझ उतर गया सर का. और फिर सब लोग जाते हैं अपने अपने काम में, इतने बिजी रहते हैं सुबह तक याद नहीं आते कि माला भी करनी होती है, फिर सुबह उठ के जब करते हैं. मतलब हमारा बॉम्बे और बाकी शहरों का जो स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है, पार्ट टाइम स्पिरिचुअल लाइफ. कितने लोग मानते हैं इस बात को? हरी बोल, मैं तो जरूर मानता हूँ मेरी लाइफ में. लेकिन हम लोग बार बार धाम में आने का प्रयास करते हैं, कम से कम साल में एक बार, ताकि कुछ समय के लिए फुल टाइम 24/7 भगवान के ही विचार में, सेवा में, भावना में, सुनने में, सेवा करने में व्यस्त रहे. एक प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, क्योंकि अंतिमता हमको 24/7 अगर नहीं सोचेंगे भगवान के बारे में तो वहाँ एंट्री नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग धाम में आए हैं. तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये जो इतने प्रयास के बाद में आप यहाँ पहुँचे हैं, कितने लोगों को कितना एंग्जाइटी था, हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोगों को एंग्जाइटी था, पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ, कितने लोगों को एंग्जाइटी थी, हाँ, यस. और आखिर में आपको भगवान ने यहाँ पहुँचा दिया है. ये धाम में जब हम आते हैं ना तो ये कीमत चुकानी पड़ती है, थोड़ी एंग्जाइटी वाली कीमत. जब तक हृदय में तीव्र इच्छा नहीं उत्पन्न होती है तब तक धाम में प्रवेश नहीं होता है. आपको लगा ठीक है टिकट निकल आया, हो गए तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, इसमें क्या है, बस उनसी बड़ी बात है, इसमें क्या है, वापस जाएंगे कभी, ऐसा भाव रहेगा तो शायद आप नहीं जा पाएंगे, और जाएंगे तो भी ऐसे ही शरीर से जाके वापस आ जाएंगे. लेकिन जो लोग बहुत तड़प तड़प कर कोशिश कर करके कर करके आते हैं, उनको भगवान हृदय से धाम में प्रवेश देते हैं. तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब लोगों को वैसा प्रवेश मिले. हाँ, तो ये जो नवद्वीप धाम है इसमें 4 प्रकार के धाम नित्यानंद प्रभु कहते हैं हमेशा के लिए निवास करते हैं. निनाद प्रभु खड़े हो जा. श्वेतद्वीप, वैकुंठ, गोलोक और वृंदावन. गोलोक मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला, वृंदावन मतलब यहाँ वाला, श्वेतद्वीप मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर एक वैकुंठ होता है. एक तरफ विष्णु सोए रहते हैं क्षीर सागर में, उस क्षीर सागर में एक टापू होता है, वो वैकुंठ है, इस विश्व का वैकुंठ है। तो श्वेत द्वीप, वैकुंठ, जो वैकुंठ धाम में गौलोक और वृंदावन, सात प्रकार के तीर्थ यहाँ पर नित्य निवास करते हैं। वो कौन से हैं? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। ये सात तीर्थ जो है वो नवद्वीप धाम में नित्य निवास करते हैं। भगवान ने जो राधा रानी को वादा किया है, वो वादे के अनुसार सबको यहाँ पर निवास दिया, उन्होंने रेजिडेंस दिया हुआ है। ऐसे कहा गया है कि जो व्यक्ति, अभी आप सुबह ट्रेन से उतरे ना नवद्वीप धाम में, कितने कदम चले वहाँ से बस तक? यस, 100 कदम चले होंगे। उसके बाद बस से यहाँ उतरे तो कितने कदम चले आप? कितने? 50-60, है ना। यहाँ पर ऐसा लिखा है नवद्वीप महात्म्य में कि जितने भी कदम आप धाम में चलते हो, जानते हुए, गिनते हुए, ना गिनते हुए, ना जानते हुए, आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाते हो। हाँ, और साथ साथ माया के प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हैं। और एक विशेष बात है नवद्वीप धाम में चलने से, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी आपको जब चलेंगे ना तो बड़े विचार पूर्वक चलना है कि ये कदम जो मैं डालने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इससे मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने वाला हूँ या मुक्त होने वाली हूँ, और माया के प्रभाव से मुक्त होने वाली हूँ, और मुझे गौर प्रेम प्राप्त होने वाला है, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होने वाला है। तो कितने कदम चलते रहते हैं ऐसे धाम में, लेकिन हमको ध्यान में नहीं आता है। ऐसे कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ यहाँ पर एक कदम चलने से होता है। इमेजिन, अभी अश्वमेध यज्ञ क्या होता है इसको बताने के लिए हमको 2 घंटे लगेंगे। व्हाट इज अश्वमेध यज्ञ, उतना समय नहीं बताएंगे यहाँ पर, लेकिन वो बहुत विकट चीज़ है अश्वमेध यज्ञ करना। उसमें कई साल लगते थे राजाओं को, कई हजारों, मतलब कैसे कहते हैं आपको, मिलियंस ऑफ करेंसी नोट्स, व्हाटएवर करेंसी, गोल्ड कॉइन्स वो लगा करते थे। बहुत सारा साधन सामग्री लोग उसमें लगते थे। कई सालों के बाद एक यज्ञ संपन्न होता था। ऐसे हजारों यज्ञ करने का लाभ जो है वो हमारे तुम्हारे लिए एक कदम नवद्वीप वृंदावन जगन्नाथपुरी में चलने से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप सोएंगे ना रात को, कितने लोग सोएंगे रात को? अरे वाह, सब योगी लोग हो गए आप लोग। जब मैंने पूछा पहली बार कितने, सब बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया था। तो आज से 5 दिन यहाँ पर कितने लोग सोएंगे? मैं तो सोऊंगा रोज रात को। यहाँ पर सोने से कई प्रकार के यज्ञ करने का लाभ होगा। हाँ, क्योंकि तो धाम है भगवान का। सोना भी यहाँ पर निद्रा, जो बाकी जगह पर जो तमोगुण का प्रभाव होता है उसमें, बहुत सारे अच्छे बुरे स्वप्न आते हैं उसके अंदर, पता नहीं क्या क्या हम लोग घूमते रहते हैं, शेर खा रहे हैं हमको या हम शेर को खा रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग भ्रमित होकर हम सपने देखते हैं। वो नींद भी यहाँ गुजारने से हम लोगों को दिव्य प्राप्ति होती है। तो धाम में विश्राम करना भी एक दिव्य प्राप्ति है। धाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। धाम जो है वो भगवान का शरीर है। इसलिए हमने आपको एक बात बताई थी, एक छोटी सी ऐसी बेकार सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि बहुत लोगों को ना थूकने की आदत होती है, वो जगह जगह थूकते रहते हैं। बम्बई में देखा है मैंने, तो यहाँ पर किसी को थूकना नहीं है, क्योंकि ये भगवान का शरीर है। नवद्वीप मायापुर धाम, नाम रूप लीला और धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये भगवान से अलग नहीं है। यानी कि भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान का धाम भी भगवान है, भगवान का रूप भी भगवान है, और भगवान की लीला भी भगवान है। तो जब आप लीला सुन रहे हो भगवान की, यानी कि भगवान का ही संग कर रहे हो आप। जब भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान का ही संग कर रहे हो। जब भगवान के धाम में बैठे हो, भगवान के ही गोद में बैठे हो और भगवान को देख रहे हो, तो वो भगवान का रूप भी भगवान से अभिन्न है। तो आप समझने का प्रयास करो कि ये जो चीज़ आपको प्राप्त हो रही है, इसका महात्म्य अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बहुत चीज़ों को ऐसे ही भूलते जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे उनके ऊपर। वैसे ही इस धाम में एक अद्भुत चीज़ है, उसका नाम है गंगा नदी। नवद्वीप धाम का एक अविभाज्य अंग वो है गंगा नदी। वैसे वृंदावन धाम का अविभाज्य अंग क्या है? यमुना नदी, जो उसका एक क्या कहते हैं उसको, इनसेपरेबल पार्ट। वैसे गंगा नदी जो है वो नवद्वीप धाम का एक अविभाज्य अंग है। तो यमुना नदी को भगवान ने बहुत संग दिया। आप जानते हैं ना, जब भगवान ने अवतार लिया, अवतार लेकर केवल संवाद किया देवकी वसुदेव से और वसुदेव को कहा कि मुझे ले चलो। ले चले तो यमुना नदी ऊपर 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 आई, तो भगवान यमुना नदी में गिर गए। जानबूझकर गिरे, हाँ, फिसल के नहीं गिरे। वो यमुना जी को कृपा देना चाहते थे। कुछ जगह लिखा है कि उनके चरणों का स्पर्श यमुना जी को हुआ, और कुछ जगह लिखा है कि वो एक्चुअली पानी में गिर गए। फिर कोयलो 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 ऐसे पुकारा उन्होंने, किसने? वसुदेव ने। तो उधर एक गोकुल में एक घाट है, उसका नाम है कोयलो घाट। वहाँ पर उन्होंने पुकारा था, कोयलो पुकारो पुकारो, कोयलो कोयलो कोयलो, मतलब कोयलो लाला को ले लो जो गिर रहा है, गिर गया पानी में। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि भगवान ने जन्म लेकर कुछ ही क्षणों में यमुना जी को अपना अंग संग दिया, यमुना जी को चरणामृत बना दिया, यमुना जी में स्नान कर दिया। एज सुन एज ही टुक बर्थ, ही गेव यमुना द फॉर्चून ऑफ हिज बॉडीली एसोसिएशन। और बाद में तो जानते हैं ना, पूरी 10 साल 4 महीने तक तो यमुना जी के किनारे कितना लीला किया उन्होंने, राक्षसों को मारा बहुत लोगों को, फिर बांसुरी सीखी राधा रानी से, गौचारण किया, पेड़ से कूदे उसके अंदर, कालिया दमन किया यमुना जी के अंदर, क्या क्या नहीं किया यमुना जी के अंदर भगवान ने। यमुना जी को इतना भाग्य दिया उन्होंने, यहाँ तक कि यमुना देवी को पत्नी बनाया अपना, पंचम पत्नी भगवान की यमुना को इतना सम्मान किया उन्होंने। तो गंगा जी को ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन ऐसी इच्छा हुई कि मुझे भी ऐसा भाग्य मिलना चाहिए, वाई नॉट मी ऑल्सो। तो उन्होंने ऐसे कहा है कि इस जगह पर जहाँ पर आप लोग बैठे हो, यहाँ पर आकर तपस्या की और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे भी आपका संग मिलना चाहिए। तो यमुना जी के संग देने के बाद में गंगा देवी की तीव्र इच्छा को देखते हुए भगवान ने कहा कि अगले अवतार में मैं आपके ही किनारे जन्म लूँगा। और इसलिए जहाँ पर उनका जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, वो घर जो है वो गंगा किनारे था, एकदम किनारे पे। आज गंगा पीछे चली गई है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से सच्ची माता जो यशोदा की अवतार थी, जगन्नाथ मिश्रा जो नंद बाबा के अवतार थे। हाँ, मैं आपको अभी किरदारों का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंट्रोड्यूसिंग द चीफ कैरेक्टर्स ऑफ दिस होली ड्रामा। नंद महाराज के अवतार जगन्नाथ मिश्रा, यशोदा माई के अवतार कौन? सच्ची माता। बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु। हनुमान जी भी आए इसके अंदर, कौन बनकर आए? मुरारी गुप्ता। नारद मुनि आए, श्रीवास पंडित बनकर आए। महाविष्णु जो पूरे भौतिक ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो भी वहाँ से सीएल लेके आ गए, किसी को बिठा के आ गए कि तुम बैठो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। वो क्या बनकर आए? अद्वैत आचार्य बनकर आए। राधा रानी भी आई, क्या बनकर आई? गदाधर पंडित बनकर आए। इस तरह से पंच तत्व का निर्माण हुआ। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं, बलराम जी नित्यानंद प्रभु, महाविष्णु अद्वैत आचार्य, राधा रानी गदाधर पंडित, और नारद मुनि जो हमेशा ब्रह्मचारी रहते हैं, इस अवतार में गृहस्थ बने श्रीवास पंडित के रूप में। और कई प्रकार के लोग, यहाँ तक कि भीष्म देव, पांडु, प्रहलाद महाराज, इस प्रकार के कई लोग। विशेषता है ये अवतार की कि इस अवतार में भगवान के पहले जितने अवतार हुए हैं, उस हर एक अवतार के अपना अपना एक डिवोटी का ग्रुप होता है। तो नरसिंह देव के भक्त कौन है? प्रहलाद महाराज। वामन देव के अवतार में उनके भक्त होते हैं, मत्स्य अवतार के भक्त होते हैं, वराह अवतार के होते हैं, कुरुम अवतार के होते हैं, कृष्ण रूप में आते तभी होते हैं। हर अवतार में उनके अपने भक्त होते हैं, वो बाकी अवतारों में नहीं आते, जब वो अवतार होता तभी आते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु के अवतार का एक विशेष भाव ऐसा है, विशेष तत्व ऐसा है कि जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौरांग महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु एक ही है। हाँ, गौर अंग, जिनका अंग जो है गौर वर्ण का है, उसको गौरांग कहते हैं। तो गौरांग महाप्रभु का जो ये अवतार होता है कलयुग में, इसमें विष्णु के सभी अवतारों के सभी भक्त जो है वो बेस बदल कर अवतार लेते हैं। हर अवतार के जितने भक्त हुए हैं वो सभी इसमें अवतार लेते हैं, ये इसकी विशेषता है। जैसे अवतार तो कृष्ण का है स्वयं, लेकिन मुरारी गुप्ता, हनुमान जी भी मुरारी गुप्ता बनकर आए हैं, रूप मंजरी रूप गोस्वामी बनकर आए हैं, अलग अलग लवंग मंजरी जो है वो सनातन गोस्वामी बनकर आए हैं, प्रहलाद जी वासुदेव दत्त बनकर आए हैं। माम गाची करके यहाँ पर एक जगह है मुदत रूम द्वीप, वहाँ पर निवास करते थे। व्यासदेव कौन बनकर आए, वृंदावन दास ठाकुर बनकर आए। ऐसे कई लोग अलग अलग प्रकार के भक्त बनकर इसमें इस दिव्य लीला को देखने को आए। इसमें क्या विशेषता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, वो छोटी सी कहानी है, बहुत लंबी लंबी कहानी लगी, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भगवान ने जब रासलीला की वृंदावन में, तो वो सभी गोपियों के जितने रूप थे, जितने गोपियां थी, उसमें एक एक रूप बनाकर नाच रहे थे। एक कृष्ण थे लेकिन हर एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण बनकर विस्तारित होकर नृत्य कर रहे थे। तो गोपियों को गर्व हुआ कि देखो मैं कितनी स्पेशल हूँ, मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, बाकी सबको छोड़कर मैं इतनी स्पेशल हूँ कि मेरे साथ ही आ रहे हैं। उनको पता नहीं था कि सबके साथ में, तो सभी गोपियों को लगा कि वो मैं इतनी स्पेशल हूँ। तो फिर क्या हुआ, सबको गर्व हुआ कि आई एम स्पेशल। तो जब गर्व होता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। सबको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी चीज़ पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। जैसे ही गर्व निर्माण होता है वो समझता भी नहीं कभी निर्माण हो गया, लेकिन जैसे ही गर्व निर्माण होता है भगवान हमें छोड़कर दूर चले जाते हैं। अहंकार, मिथ्या अहंकार और गर्व एक ऐसी वस्तु है जो आप कितने भी भगवान के पास में होंगे तुरंत जुदा कर देती है आपको। भगवान अंतर्धान हो गए, एकदम अदृश्य हो गए, तो सब गोपियाँ एकदम चल भी चल हो गई और सबको बताने लगी, पता है वो मेरे साथ में अकेले नृत्य कर रहे थे। दूसरे ने भी वही बताया, तीसरे ने भी वही कहा, सभी लाखों करोड़ों गोपियों ने भी यही कहा कि मेरे साथ भी थे, मेरे साथ भी थे। तब सबको ध्यान में आया, अरे वो तो मेरे साथ नहीं सबके साथ थे, हमने बेकार में गर्व किया और उनको खो बैठे, अभी क्या करें। सब गोपियाँ विरह में व्याकुल हो रही है, रो रही हैं, राधा रानी के नेतृत्व में ढूंढ रही हैं, रता पताओं को, वन्य देवताओं को, ग्राम्य देवताओं को पुकार रही हैं, आपने हमारे कन्हैया को कहीं देखा है। और ऐसे करते 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 एक वन में आई, जमुना किनारे पे, वहाँ पर एक व्यक्ति को देखा, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, मोर पंख लगा हुआ है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, आंखें बंद हैं, लेकिन कलर जो है वो स्वर्ण कांति जैसा है, गोल्डन कलर, सब कुछ कृष्ण जैसा है, चेहरा कृष्ण जैसा है, मोर पंख है वैसा ही है, जैसा नृत्य कर रहे थे, जैसा छोड़ के गए थे उसी रूप में, लेकिन कलर चेंज है। तो वो डाउट रहा मन में कि कौन है कौन है कौन है, वो चर्चा हुई आपस में, हु इज दिस हु इज दिस। तो फिर राधा रानी ने कहा कि मैं जाती हूँ देखती हूँ क्या है। तो राधा रानी आगे जाती है, उनको स्पर्श करती है, जैसे स्पर्श करती है वो गोल्डन कलर धीरे धीरे नष्ट होकर वापस सांवला रंग वहाँ पर प्रकट होता है, और धीरे धीरे आंखें खुल जाती है, और बाद में पता चलता है कि ये कृष्ण ही है। तो राधा रानी पूछती है, क्या रहस्य है, हमने कभी आपको इस रूप में देखा नहीं, आपका ये वर्ण बदल कैसे हो गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं आपसे दूर होकर बहुत दुखी हुआ, और मैं भी आपकी जो आपके आप मुझ पर प्रेम करते हो, जो आपका मेरा संबंध है प्रेम का, जो आप मेरी सेवा करते हो, आपका जो भाव है उस पर मैंने चिंतन किया, उस पर मैं सोचता रहा बहुत बहुत गहराई में, और मैं मग्न हो गया आपके मेरे प्रति जो भाव है उसको मैं सोच सोच कर मग्न हो गया, इतना मग्न हो गया कि मैं राधामय बन गया, मतलब आप ही बन गया मैं, आपका कलर आपकी कांति आपका रंग जो है मुझ पर चढ़ गया। और जब ये रंग मुझ पर चढ़ गया तो मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद का मैंने दिव्य अनुभव किया कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। हर रोज हर क्षण आपके संग में मैं आपके प्रेम का अनुभव करता हूँ, लेकिन आपके चिंतन में जो आनंद था वो मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि मैं अगला अवतार लूँगा तो आपका भाव लेकर अवतार लूँगा। आपका जो भाव है जिसका मैंने चिंतन किया उसी को लेकर मैं पूरा अवतार लेकर यहाँ पर समय बिताऊँगा। तो राधा रानी कहते हैं कि अरे मेरा भाव लेकर आप अवतार लोगे तो आप बेहोश हो जाओगे, आप गिर जाओगे पत्थर में, कंकड़ में, कांटों में, पेड़ की शाखा से जल में गिर जाओगे, अपने आप को जख्म करोगे, कष्टी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, मैं ये विचार भी सहन नहीं कर सकती हूँ। इसलिए भाव तो आप लेके जा रहे हो लेकिन मैं मेरी कांति से आपको ढक देती हूँ, आई विल गिव माई कम्प्लेक्शन टू यू। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु का अवतार की प्लानिंग हुई। आपको समझ में आया गौरांग महाप्रभु कौन है? गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण है स्वयं, लेकिन राधा का भाव लेकर, भक्ति का भाव लेकर प्रकट हुए। और क्या विशेषता है? भगवान के रूप में प्रकट नहीं हुए, वो भगवान का भक्त के रूप में प्रकट हुए, ये और एक विशेषता है। इसलिए इतिहास के पन्नों पे आप पढ़ेंगे, हमारी चौथी की किताब में हम लोग पढ़ते थे हमेशा इतिहास में कि बंगाल में चैतन्य महाप्रभु नाम के एक संत हुए। संत मतलब एक हमारे आप जैसा एक व्यक्ति बाद में भक्ति करने के बाद संत बन जाता है, अ लिविंग एंटिटी, इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। हमारे किताब में भी था क्योंकि भगवान ने जानबूझकर हमारे उनके इस अवतार को छंद रूप में रखा है। इसको छंद अवतार कहते हैं, छुपा हुआ अवतार कहते हैं। उन्होंने स्वयं ये प्रकट नहीं करना चाहा कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि उन्होंने और भी एक बात कही थी राधा रानी को कि जब आप मेरी सेवा करती हो तब मुझे बहुत खुशी मिलती है क्योंकि आप मेरी सेवा करते हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरी सेवा करते हुए आपको मुझसे अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, और वो क्या आनंद है वो मुझे पता नहीं है क्योंकि आपको प्राप्त होता है। मेरी सेवा कर रहे हो तो मुझे एक अनुभव मिलता है, लेकिन मेरी सेवा करते हुए मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को, सब लोगों को मुझसे अधिक अद्भुत प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है। मैं जब गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊँगा, चैतन्य महाप्रभु बनकर आऊँगा, तो भक्त बनकर आऊँगा और आपको जो प्राप्ति है आनंद की मेरी सेवा करने से उसका मैं अनुभव करूँगा, क्योंकि मैं भक्त बनकर भगवान की सेवा करूँगा, भगवान बनकर नहीं आऊँगा। तीसरी रहस्य की बात यह है, सब लोग ध्यान से सुनिए कि आपका कितना बड़ा भाग्य है। जब रासलीला होती थी ना तो उधर किसी को प्रवेश नहीं था, ना ग्वाल बालों को था, ना मोर को था, ना गाय को था, नंद बाबा, यशोदा, बड़ी बड़ी गोपियों को नहीं था, केवल जो कुमारिका या ऐसे जवान गोपियाँ थी, माधुर्य भाव में थी, इतने ब्रजवासियों के बीच में केवल गोपियों को प्रवेश था उसमें। यहाँ तक कि जब बंसी बजी तो लक्ष्मी जी भाग के आई वैकुंठ से, विष्णु भगवान का चरण छोड़ के आकर्षित होकर भाग के आई कि मैं रास का आनंद लेती हूँ, उसको रोका गया, सॉरी मैडम आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्यों? नहीं, आपको सबसे पहले ना गाय का गोबर निकालना पड़ेगा, गाय को धोना पड़ेगा, दूध निकालना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, मक्खन बनाना पड़ेगा, गौशाला साफ करनी पड़ेगी, गोबर के गंडे बना के सुखाने पड़ेंगे, इकट्ठा करके घर में जमा करने पड़ेंगे, ये सब काम करने के बाद में आपको इसमें एंट्री मिल सकती है। वो कहते मैं वैकुंठाधिपति की पत्नी हूँ, अब जानते नहीं मुझे मैं कौन हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, हमारे घर नौकरा नहीं करते सब ये। तो वो कहते नहीं, अगर आपको ये काम पसंद नहीं है तो यहाँ पर एंट्री नहीं आपको। तो वो अपने ऐश्वर्य भाव को छोड़ नहीं पाई, इसलिए लक्ष्मी जी को भी रास में प्रवेश नहीं मिला। बेलवन में गई, वहाँ पर तपस्या करी, आज भी तपस्या कर रही है, आज भी लक्ष्मी देवी को प्रवेश प्राप्त नहीं है रासलीला में। फिर शिव जी हमारे भाग भाग के आए, ये बंसी की आवाज़ सुनकर, हमें आना है सेवा करने के लिए, तो रोका गया उनको। क्या कहा गया? रासलीला में केवल एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, बाकी सारी स्त्रियाँ हैं, आपको जाना है, आपको स्त्री बनना पड़ेगा। आप में से कितने पुरुष तैयार हैं? देखो कितने धीरे धीरे, ऐसे तकलीफ हो रही है, ऐसे 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 हाथ ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी कठिन बात है ये, पुरुष को, अपने पुरुषत्व को छोड़कर स्त्री बनना, ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत अपमान लगता है अपने आप। समझो अभी कुछ ऐसे आँख बंद किया आपने और आँख खोला तो अचानक आपको पता चला कि आप स्त्री बन गए हो, तो क्या होगा आपका? कुछ लोग काठमांडू भागेंगे, कुछ लोग बॉम्बे भागेंगे, कुछ लोग इधर भागेंगे उधर भागेंगे, ये लोग क्या किसको मुँह दिखाएंगे, पहले यहाँ मुँह दिखाएंगे नहीं उधर जाएंगे सब लोग। हमारे शिव जी इतने तीव्र इच्छा में थे, उनको बताया कि आपको स्त्री बनना पड़ेगा, तो उन्हें सोचा नहीं कि पार्वती का सोचेगी, बोले कैसे बनना है बताओ। बोला आपको मानसरोवर में जहाँ पर राधा रानी एक बार रोई थी गुस्से में, वो रोई थी तो उसके अश्रुओं से वो एक बड़ा तालाब बना है वहाँ पर, जमुना के पार है वो, उधर आप स्नान करोगे तो आपको गोपी का शरीर प्राप्त होगा, गोपी भाव प्राप्त होगा, फिर आपको प्रवेश मिलेगा। तो ऐसे भागे ना सोचा ना इधर आगे पीछे सोचा नहीं कुछ, सीधे भाग के गए जमुना जी को पार करके, सीधे छलांग लगाए उसके अंदर, एक क्षण के अंदर गोपी भाव और गोपी शरीर प्राप्त हो गया, बहुत सुंदर। और वैसे ही गीले भाग भाग के जमुना पार करके रासमंडल के पास में आए, तो ललिता और सब गोपियाँ हंसने लगी उनको देखकर। क्यों हंसने लगी बताओ, उसमें क्या है, इतनी सुंदर गोपी बनकर हंसना क्या है उसके अंदर, एनीबडी एनी गेस? अरे सांप थोड़ी गोपी बने, वो सांप तो गले में रहे ना ऐसे ही, अभी आप में सुंदर कोई औरतें यहाँ पर बैठी है उसके अंदर एक गले में सांप होगा, या हाथ में सांप होगा, या सर पे सांप होगा, तो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो शिवजी तो बहुत सुंदर गोपी बने, बहुत सुंदर, लेकिन सर पे एक सांप, गले में एक सांप, दो हाथ में दो, इधर सब जगह सांप ही सांप। तो वो देखकर सब गोपियाँ हंसने लगी कि देखो इतना भाव है इनका, रास में प्रवेश करना है, सेवा करना है भगवान की, तो सब याद ही नहीं कि सांप भी है बीच में। तो ललिता देवी ने और गोपियों ने मिलकर बड़े प्रेम से उनको सजाया, उनका श्रृंगार किया और सुंदर गोपी बनाया। क्या नाम पड़ा? गोपीश्वर, गोपीश्वर महादेव। हाथ पकड़ के उनको अंदर ले गए जहाँ पर रत्न सिंहासन पर राधा और कृष्ण विराजमान थे, सखियाँ सेवा कर रही थी। ललिता ने अपने हाथ पकड़कर सुंदर गोपी को अंदर तक ले गई बीच में रासमंडल में, और हाथ में चामर दिया और चामर की सेवा हुई। चामर ढुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद्र, चामर ढुलाने का तो बहाना है, मुख का दर्शन तो करना है। चामर यहाँ तो मुख का दर्शन, चामर वहाँ तो मुख का दर्शन, इस तरह से चामर का सेवा किया। फिर ललिता ने उनको फिर हाथ पकड़ के रासमंडल के बाहर ले गई वो, और कहा आप यहीं पर रहो और रासमंडल की रक्षा करो और यहीं पर निवास करो। कहने का तात्पर्य क्या है, इतने बड़े बड़े लोग आए, किसी को प्रवेश नहीं मिला, जिन्होंने कोशिश किया उनको नहीं, जिनको पता नहीं उनको भी नहीं, ओनली गोपीज। और ऐसे कहते हैं कि जीव को सर्वोच्च आनंद क्या प्राप्त हो सकता है, वो आनंद सर्वोच्च आनंद रास लीला में भगवान ने गोपियों को दिया। एक जीव भगवान के संबंध में कितना दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है, सर्वोच्च वो रास लीला है। वो आनंद भगवान ने ब्रह्मा जी की एक रात के समय तक, वो गणित ऐसा है, अभी करेंगे तो बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, तो बड़ा लंबा चौड़ा गणित है वो। ब्रह्मा जी की एक रात बहुत दिव्य होती है, बहुत लंबी होती है, वो एक रात के अंदर इस भौतिक दुनिया की एक रात को समेट दिया उसके अंदर, मतलब समय यहाँ का केवल एक रात का समाप्त हुआ, लेकिन उसमें ब्रह्मा जी की एक रात्रि का समय उन्होंने समा दिया, और इतना प्रेम का अनुभव गोपियों को दिया। लेकिन जब समाप्त हो गया वो, तो खाली गोपियों के लिए मुमकिन था वो, आगे जितनी भी रासलीला की गई वृंदावन में, वसंत ऋतु में हुई, शरद ऋतु में कई हुई, हर रोज हुई, हर कोने कोने में, हर अणु अणु पर वहाँ पर ब्रज में रासलीला हुई है, लेकिन प्रवेश किसको? केवल गोपियों को। तो इसका आज की कथा में कनेक्शन क्या है कि जब वही श्री कृष्ण जब गौरांग महाप्रभु वन पर आए, तो वही रासलीला का आनंद जो है वो हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम सबको उन्होंने प्रस्तुत कर दिया उसको। पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थान स्थाने अस्थान, कोई व्यक्ति योग्य है अयोग्य है, कोई भक्त है नहीं है, किस कुल से जन्मा हुआ है, क्या कर्म है उसके, क्या भाव है उसका, योग्यता है कि नहीं है, क्या कर्मों से मुक्त हुआ कि नहीं है, कि भक्ति प्राप्त किया है कि नहीं है, ये किसी को भी ना देखते हुए, किस स्थान में खड़ा है, वो स्थान अच्छा है कि बुरा है, पवित्र है कि अपवित्र है, ये कुछ भी ना देखते हुए उन्होंने सभी जीवों के लिए वही रासलीला का दिव्य आनंद जो है हरि नाम संकीर्तन से प्रस्तुत किया। द सेम हैप्पीनेस विच वॉज अवेलेबल टू ओनली गोपीज, ही मेड इट अवेलेबल टू एवरी फॉलन कंडीशन सोल्स। इसलिए उनको अवतार या अवतार कहते हैं। जो कृष्ण अवतार में उन्होंने बहुत सीमित रखा, रिजर्व रखा, किसी को नहीं दिया, केवल गिने चुने लोगों को दिया, वो आनंद जो है उन्होंने आम जनता में बांटा। इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिर में ना एक फेमस पेंटिंग है, जिसका ऊपरी हिस्सा जो है आधा हिस्सा उसमें कृष्ण भगवान रास कर रहे हैं और निचले आधे हिस्से में चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, बस भक्त लोग नाच रहे हैं उसके अंदर। क्या बताना चाहते हैं, वो और ये सेम है, फर्क इतना ही है, वो बहुत दिव्य योग्य व्यक्ति है, इसमें अयोग्य व्यक्ति भी आकर भाग ले सकते हैं। मोस्ट अनक्वालिफाइड पीपल ऑल्सो कैन पार्ट टेक पार्ट। ये गौरांग महाप्रभु की असीम कृपा है और यही वो नवद्वीप धाम है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। ओरिजिनल यहाँ पर, इस यहाँ पर उसका ओरिजिन है, शुरुआत है यहाँ पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है श्रीवास आंगन, जो श्रीवास पंडित, श्रीवास आचार्य का घर है, जो नारद मुनि का अवतार जो हुए हैं, वो गृहस्थी जीवन का उनका घर है वहाँ पर। उसी घर में ये हरिनाम संकीर्तन जो है वो शुरू हुआ। संकीर्तन की व्याख्या ये है कि जहाँ पर दो से अधिक लोग एकत्र आकर प्रेम से भगवान के नाम को पुकारते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। संग में किया हुआ कीर्तन, संकीर्तन, और कीर्तन का मतलब भगवान के नाम को गाना। एक होता है जप, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हम करते हैं, उसमें कई बार नींद भी आ जाती है। आती है कि नहीं, कितने लोगों को आती है बताओ? हरे कृष्णा, मतलब आप नॉर्मल हो, आप नॉर्मल नहीं हो। तो हरिनाम के जप में बैठकर एक लय से करना होता है, लेकिन कीर्तन जो है उसको में गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, मृदंग, करताल, वायलिन, सैक्सोफोन, क्या कहते हैं, ढोलक, झैम्बे, क्या क्या बजाते हैं उसके अंदर। और कीर्तन में आज तक मैं सोया हुआ आदमी देखा नहीं। कीर्तन में दो चीज़ होती है, एक आदमी सो नहीं सकता है और कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता है। कितने भी आप दुखी होंगे, फ्रस्ट्रेशन में होंगे, टेंशन में होंगे, परेशानी में होंगे, आत्महत्या का विचार भी आपके मन में आया होगा, लेकिन अगर आपका भाग्य ऐसा है कि ऐसे आत्महत्या के विचार की स्थिति में अगर आप हरिनाम संकीर्तन जहाँ हो रहा है वहाँ पर पहुँच जाते हो, तो आपका तो आत्महत्या का विचार तो दूर चला जाएगा, सारे दुख दर्द परेशानी मिट जाएगी और इतने आप आनंद में हो जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ संकीर्तन हो रहा है, वहाँ से आ रहे हैं, तो वो वहाँ से हंसते ही आएगा अंदर, ऐसा नहीं आएगा, हे क्या हो रहा है यहाँ पर यार, क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ से अंदर आते हो, ऐसा आएंगे, आते ही तो हंसते ही अंदर आएंगे एकदम मुस्कान के साथ में, क्योंकि वो दिव्य आनंद का अनुभव उसमें होता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम, अंत में क्या गया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसके करने से हृदय की जितना मैल है वो नष्ट हो जाता है। और महादावाग्नि का मतलब क्या है, जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा आदि, दैविका आदि, भौतिका आदि, आत्मिका जितने क्लेश है, जितनी परेशानी है, महादावाग्नि निर्वापणम, सब समाप्त हो जाता है। इसमें जो भी भाग लेता है और जितना भाग लेता है उतना दिव्य आनंद का अनुभव करता है। जितना आलस्य के साथ में जाएगा उसका शरीर हिलेगा ही नहीं, तो प्रभु जी जरा हिलो, जरा अगर हाथ उठाओ, उठाएगा हाथ, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। जैसे ताली बजाने के बाद में पेड़ पर बैठे हुए सब पंछी उड़ जाते हैं, वैसे दुख दर्द और पापों के जितने पंछी हमारे आत्मा पर बैठे हुए सब उड़ जाते हैं हरिनाम संकीर्तन को अनुभव करते हुए। और सबसे बड़ी बात रहस्य की है कि जो गोपियों को भगवान ने अनुभव दिया उसका अनुभव हम और आप जैसे पतित लोगों को हो सकता है। ऐसा दिव्य संकीर्तन जो है इस जगह पर जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने आरम्भ किया उसका। पहले दिन में शुरू किया, एक दिन बोले अरे भक्तगणों, हम रात में सोते हैं, रात को सोकर हम लोग तमोगुण में व्यर्थ करते हैं, क्यों ना आज से हम रात को भी कीर्तन करें। आप में से कितने लोग तैयार हैं रात को कीर्तन करने के लिए, हाथ ऊपर उठाए। सब लोगों ने एकदम छलांग लगाई, हरि बोल, वी विल डांस इन द नाइट एवरी डे। तब से जाकर रात्रि का कीर्तन शुरू हुआ। लेकिन दिन वाले में रात वाले में एक अंतर था, दिन वाला ओपन डोर था, रात वाला क्लोज डोर था। उसमें केवल गिने चुने जो शुद्ध भक्त थे उनको ही एंट्री दी, और ऐसे कई प्रकार के अद्भुत चमत्कार रात को हुए। एनीवे वहाँ पर बताएंगे आपको श्रीवास आंगन में जाकर। तो अभी यहाँ पर आपको एक और विशेष नायिका जो है इस धाम की, गंगा नदी, उसके बारे में बताएंगे। पहले मैंने आपको बताया कि उन्होंने तपस्या की, तपस्या के फल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ पर भगवान ने उतार लिया। और फिर नारद पुराण में कहा है गंगा जी का महात्म्य। गंगा जी क्या चीज़ है? गंगा जी जो है वो भगवान के चरणों से निकला हुआ अमृत है। गौलोक धाम में निकली है वो, यहाँ पर नहीं निकली। गौलोक धाम में श्री कृष्ण के दिव्य इच्छा के अनुसार, इच्छा जैसे कि उन्होंने उनके दाहिने पैर के अंगूठे से गंगा जी का निर्माण हुआ। और फिर भगवान के बाएं अंग से जमुना जी का निर्माण हुआ, एक सरोवर के रूप में हुआ। ऐसे भी दिखा गया है गौलोक वृंदावन के वृत्तांत में कि जब भगवान के द्वारा राधा रानी का निर्माण हुआ, राधा रानी के द्वारा सब गोपियों का निर्माण हुआ, राधा रानी के द्वारा सब देवियों का निर्माण हुआ, भगवान के द्वारा सब सखाओं का निर्माण हुआ, सब मंडली जो है वो निर्माण हो गई, तो सबने मिलकर राष्ट्र नृत्य किया गोपियों ने मिलकर। और गोपियों के शरीर से दिव्य स्वेद निकला, जल निकला, सुगंधित जल, वो एकत्र होकर एक तालाब बना और राधा रानी ने उसका दर्शन किया। वो इतना सुंदर और दिव्य और प्रकाशमान तालाब था, तो राधा ने कृष्ण से कहा इस तालाब को नदी का रूप दिया जाए। तो वो तालाब जो है वो जमुना जी के रूप में प्रकट हुआ, और दोनों को यथा अवकाश पृथ्वी का यानी कि भौतिक जगतों का, ब्रह्मांडों का उद्धार करने के लिए भौतिक जगत में जाने का आदेश दिया गया। प्लीज़ गो इन द मटेरियल वर्ल्ड। दोनों इनकार कर रहे थे, नहीं नहीं हम लोग दिव्य लोग छोड़कर नहीं जाएंगे, वहाँ पर तो बहुत लोग पाप करते हैं, सब लोग पापी हैं, जन्म मृत्यु में बद्ध जीव हैं, सब लोग हमारे अंदर स्नान करेंगे, पाप छोड़ेंगे, हम पापी हो जाएंगे, हमारा कैसे उद्धार होगा। तो एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर संवाद है। हाँ, कितने लोगों को सुनना है इसको? हरी बोल। तो ये बहुत ही रोचक संवाद है, डिस्कशन बिटवीन कृष्णा भगवान एंड गंगा। तो भगवान गंगा जी को समझा रहे हैं, यू डोंट वरी, अभी मैं जा रहा हूँ। एक तो आपको जाने के पहले ये गोलोक का संवाद है, दूसरा संवाद जो है वो भौतिक जगत का है, मतलब भगवान जब यहाँ से लीला करके समाप्त होकर जा रहे हैं तो गौलोक में क्या कह रहे हैं, आप डोंट वरी, आप जाना चिंता मत करना, आप जब जाएंगे जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके किनारे पर जितने भी क्षेत्र होंगे वो दिव्य रूप में जाने जाएंगे, वो तीर्थ के रूप में पहचाने जाएंगे। जो जो वहाँ निवास करेगा वो भगवान का नाम, मेरा नाम लेगा, और जो जो वहाँ निवास करेगा उसको भक्ति प्राप्त होगी आपके होने से, और मेरे भक्त जो हैं संत वो भी जन्म लेंगे और आप में स्नान करेंगे। और जितने दुनिया भर के लोगों ने स्नान करके पाप छोड़ा है, एक संत के ज्ञान स्नान करने से वो नष्ट हो जाएंगे, और आपको उनका संग प्राप्त होकर आप और दिव्य हो जाएंगे, तब उसको स्फूर्ति हो गई। फिर वो लंबी कथा है भगीरथ कैसे लेके आए उसको, और गंगा एक ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में प्रवास करती है, आकाश गंगा में, सॉरी स्वर्गलोक में आकाश गंगा के रूप में रहती है, पृथ्वी पर गंगा के रूप में रहती है, और निचले लोकों में कैसे रहती है, पाताल गंगा के रूप में। अलग अलग नाम भी उसके हैं, पृथ्वी के गंगा को भागीरथी कहते हैं, और ऊपर के दोनों को मुझे याद नहीं आ रहा नाम अभी, लेकिन तीनों लोकों में जाती है वो। जमुना जी स्वर्ग लोकों में जाती है, पृथ्वी लोक में आती है, यहीं से वापस चले जाती है। फिर गंगा जी स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, नरक लोक, तीनों की यात्रा करके फिर लौट जाती है आगे। तो ये कहकर भगवान ने उनको मनाया और वो नीचे आ गई। उसकी भी बहुत कहानी है, वो शिव जी की जटा में फंस गई, फिर वो निकालने की तपस्या किया गया, फिर वो जटा से निकली तो फिर उसको बहुत सारी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक जगह यहाँ पर जानू द्वीप, वो ऐसी गंगा ऐसी बहती आ रही थी, इतनी उमड़ती हुई, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, जरूर से ज़्यादा स्पीड से आ रही थी। तो जानू मुनि का आश्रम वो भा ले गई, जानू मुनि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, जानू मुनि आँख खोल के देखा तो जब गंगा जी इतनी उद्दंड भाव से आ रही है तो सारे गंगा को पी लिया उन्होंने, गंगा जी समाप्त हो गई, उनके शरीर में चली गई। फिर भागीरथ ने पुनः तपस्या किया, और भगीरथ ने जानू मुनि को प्रसन्न किया और विनती किया, महाराज जी हमारे 60,000 पूर्वज जो है वो मरे पड़े हुए हैं राग बनकर, उनका उद्धार कौन करेगा, कृपा करके उनको रिलीज़ कीजिए आप। तो जानू मुनि ने फिर गंगा जी को रिलीज़ किया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, जाह्नवी देवी। तो फिर वो आगे चले गई, फिर उन्होंने भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। कृष्ण भगवान का जब अवतार पृथ्वी पर हुआ द्वापर में, तो समाप्त होने का समय आया, तो गंगा जी ने कहा हम भी चलते हैं आपके साथ में, अभी आप भी जा रहे हो फिर हमारा भी उद्धार कैसे होगा, आप जा रहे हो तो हम आपके संग जाना चाहते हैं। तो फिर दोबारा भगवान ने संवाद किया गंगा से, और वो संवाद में एक बहुत विशेष और एक बड़ी सुंदर बात बताई है। ब्रह्म विवर्त पुराण में संवाद आता है, हाँ, क्योंकि हम अपने मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं चिंता मत करना, आज से 5,000 साल के बाद में मैं जब जाऊंगा और 5,000 साल बीत जाएंगे, तो एक मेरा नामधारी नाम सेवक मंत्र सेवक भक्त आएगा, और वो केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जाकर नाम का प्रचार करेगा, और देश विदेश में संत रूप भक्त बनेंगे। वो व्यक्ति सब लोगों को संत रूप भक्त बनाकर भारत भूमि में लेके आएगा, और वो सब मिलकर आप में आपको आपके अंदर स्नान करेंगे, और उनके संग से आप पवित्र हो जाएंगे। वो मंत्र उपासक पूरे विश्व में जाकर भक्त बनाएगा, उन संतों को लेकर आपके पास आएगा, वो सब में स्नान करेंगे और वो आपको शुद्ध करेंगे। तो वो भक्त कौन थे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये हमारी कहानी मिलती जुलती है, क्योंकि आज तक के भगवान के द्वापर से अंतर्धान होने के बाद के पूरे इतिहास में भारत भूमि को छोड़कर समुद्रों को लांग कर कोई भी संत नहीं गया है परदेश में, क्योंकि शास्त्रों में एक वचन दिया गया है कि सन्यासी को कभी भी भारतवर्ष का समुद्र पार करके जाना नहीं चाहिए, समुद्र के पार होने के बाद बहुत माया होती है, तो साधु जो है वो कभी भी समुद्र पार करके जाता नहीं है। उडुपी के संप्रदाय में जो भी समुद्र में पार करके गया हुआ है संप्रदाय से उनको बाहर कर दिया गया है। तो एक विद्या तीर्थ करके सन्यासी थे उडुपी के मंदिर में, हाँ, विद्यापति तीर्थ। तो उनको हमारे इस्कॉन के भक्त जाके मिले, उन भक्त को मैं मिला, वो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट के रूप में आए थे। उन्होंने कहा कि विद्यापति तीर्थ महाराज का मेरा बहुत निकट का संग हुआ, उन्होंने बताया कि हमारे संप्रदाय में किसी भी सन्यासी को गुरु को आदेश नहीं है कि हम समुद्र को लांग कर विदेश चले जाएं, और हमारे चारों तरफ एक एक मीटर तक भक्तों का जाल रहता है, नेटवर्क, भक्त लोग ऐसे साखली बनाकर खड़े रहते हैं और हम बीच में चलते हैं, ताकि किसी भी स्त्री या पुरुष का या जो भौतिकतावादी रहे जो माया में है ऐसी छाया भी हमारे पर न पड़े, उनका संग भी प्राप्त न हो, ऐसे भक्त हमको घेर के रखते हैं 24 घंटे। जितने भी साल हम जीते हैं भक्तों का जो रिंग है ना, विंग, उसके अंदर रहते हैं, ताकि हम अपने आप को, हमको आदेश है कि किसी भी भौतिकतावादी लोगों के संग में इतने पास में नहीं आना चाहिए, अगर संग देना भी है तो 1 मीटर के दूर बैठकर कथा करनी है आपको, और सबसे पहले आपके भक्त जो है वो जो शुद्ध जीवन जी रहे वो आगे बैठेंगे, आपको कवर करेंगे, उसके पीछे जनता बैठेगी, इतना कड़क नियम है। फिर भी हमारे संप्रदाय के सन्यासियों का पतन होता है, और ये आपके प्रभुपाद जी अकेले गए, ना कोई भक्तों का कवच था, ना कोई सर्कल था, 7 समुद्र के पार गए, कोई वहाँ सेंटर नहीं था, कोई रिसीव करने के लिए नहीं था, कोई रहने की व्यवस्था नहीं, कोई प्रसाद बनाने की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, कैसे उन्होंने भक्त बनाया लोगों को, उनको प्रभावित होना चाहिए था लोगों के प्रवर्ताओं से, लेकिन इतना सा भी प्रभावित नहीं हुए, और अपना जो प्रभाव था सबको प्रभावित करके अपने जैसे लोगों को बनाया, और एक नहीं हजारों लाखों लोगों को बनाया, बड़ी अद्भुत विभूति है। ऐसा उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो मध्वाचार्य के स्वयं बोनाफाइड फॉलोअर है, इतना सारा रिस्क लेकर वो गए नंबर वन, और खुद जरा सा भी विचलित नहीं हुए या पतित नहीं हुए, और खुद का जो प्रभाव था जो वृंदावन धाम को हृदय में ले गए थे वो लेकर पूरी दुनिया में जाकर जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ भक्त बनाए और अपने जैसा बनाकर उनको भारतवर्ष में लेके आए। और ब्रह्म विवर्त पुराण का जो संवाद जो कृष्ण ने किया था उसको उन्होंने सफल करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद की, तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के संप्रदाय में दीक्षित और जुड़े हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी का जो फॉर्मूला है वो इतना प्रभावी है कि उनके जीते जी जो जितना कार्य उन्होंने किया है उसके 3 गुना कार्य उनके जाने के बाद में हुआ है। हर एक संप्रदाय में जब कोई आचार्य जन्म लेता है और जब वो अंतर्धान हो जाता है तो वो संस्था जो है कुछ समय के लिए एकदम कोलैप्स हो जाती है, एकदम लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब से गुजरे हुए हैं, जब से पधार गए हैं गोलोक धाम, तब से प्रचार इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि उनके जाने के पश्चात उनके जितना प्रचार किया था उससे 3 गुना प्रचार हो गया है, 3 गुना ग्रंथ वितरण हुआ है, 3 गुना भक्त, मे बी मोर देन दैट, इतने भक्त बने हैं। और एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह भक्त बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, हाँ, श्रृंखला प्रतिक्रिया कहते हैं उसको। एनीवे, एक ब्राह्मण की कहानी आती है। वो ब्राह्मण राजा का ब्राह्मण था, राजा ने रखा हुआ था, बड़ा गर्व था उसको, तो काफ़ी उसको गर्व की वजह से बहुत पापों वाले कार्य करता था वो। जब एक दिन वो रास्ते से जा रहा था तो एक बैल रास्ते पे सोया था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया, हाउ कैन यू कम ऑन माई रोड, कैसे आपकी हिम्मत है कि मेरे रास्ते में आके सो जाए। तो डंडा लेके बहुत पीटा उसको उसने, तो बैल को बहुत क्रोध आया, बैल उठा और अपने सिंह उसके पेट में घुसाया, उसको मार दिया और वही ब्राह्मण मर गया। तो उस समय दूसरा एक ब्राह्मण गंगा नदी किनारे स्नान कर रहा था, वो स्नान करके आया तो देखा तो बैल जख्मी भी है, बैल को मारा था उसने पहले, बैल के 2 सिंह पेट में घुसा हुआ, ब्राह्मण रक्त से लथपथ होकर मृत पड़ा हुआ है। तो तुरंत भागा वो और गंगा जी का जल लेकर उस पर छिड़का उसने। जैसे ही उसने गंगा जी का जल छिड़का उस पर, उसको पीछे बहुत कोलाहल सुनाई पड़ा, पीछे मुड़ के देखा तो जख्मी होकर यमदूत भाग रहे थे। मन में आया आप? जख्मी अवस्था में यमदूतों को भागते उसने देखा, उसको रोका, अरे क्यों भाग रहे आप? उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण जो है उसका बैल के सिंह के वजह से वध हो गया है, बड़ा पापी था, तो हमको आदेश दिया गया इसको उठा के यमलोक ले जाओ। तो हम लोग आए उसको, और जब हम उसको उठा ही रहे थे तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ बहुत तेज वाले लोग वहाँ से आए, बहुत तेज 4 भुजा वाले, हाँ 4 भुजा वाले लोग वहाँ पर आए, शस्त्र अस्त्र लेकर बहुत तेज वाले थे, उन्होंने हम पर हमला किया, उनको इतना पीटा जख्मी करके हमको भगा दिया, हम भाग रहे हैं उनके भय से। तो ब्राह्मण को समझ में आया कि बीच में क्या हुआ, समझ में नहीं आया वो क्या हुआ था, गंगा जल उस पर छिड़का गया, गंगा जल का स्पर्श होते ही उसके जितने पाप थे वो नष्ट हो गए, जिन पापों की वजह से यमदूत उनको लेने आ रहे थे वो पाप ही नष्ट हो गए, फिर भी उठा रहे तो पाप नष्ट होते ही वहाँ से विष्णुदूत आ गए। जैसे अजामिल की कथा आती है वैसे ही उन्होंने यमदूत को परास्त कर दिया, जख्मी कर दिया और भगा दिया वहाँ से, और इसकी आत्मा को उठाकर वैकुंठ ले गए। ये कथा कहाँ आती है, नारद पुराण में आती है। एक और कथा आती है जो भी अग्नि पुराण में आती है, सॉरी नारद पुराण में भी और एक कथा आती है। गरुड़ जी एक बार अपने भक्ष जो है वो सांप को पकड़ा उन्होंने, वो लंबा होता ना सांप, तो बीच में पकड़ा उसको अपने हाथ से और वो उड़ रहे थे, बीच में ऐसे ही उड़ते उड़ते ऐसे ऊपर नीचे उड़ रहे थे, तो गंगा नदी के ऊपर उड़ रहे थे, तो थोड़ा सा नीचे आ गए तो वो सांप की जो पूँछ थी ना, पूँछ वो गंगा जी को लग गई। जैसे ही ये पूँछ गंगा जी को लग गई तो सांप का रूपांतर चतुर्भुज विष्णु दूत के रूप में हुआ, मतलब अभी हाफ अब ऐसा पकड़ा हुआ है उसको दो हाथ से, दो इससे पंजों से, तो सांप था पहले, अभी एकदम आदमी हो गया वो, 4 भुजा वाला, मुकुटधारी, पीताम्बरधारी, चक्र चक्र पद पद्म गदाधारी, तो आश्चर्य हो गया उनको, देखा अरे तो विष्णु बन गया तुरंत, मतलब विष्णु दूत बन गया। तो उसको हाथ से उठाकर कंधे पर रखा और गरुड़ जी वैकुंठ धाम में ले गए। और ये कथा कौन सुन रहे हैं, नंद महाराज सब ग्वाल बालों के संग बैठ के सुन रहे हैं, तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, तो मुझे अभी जाना है गंगा जी स्नान करने के लिए, अभी जा रहा हूँ मैं यात्रा करने के लिए, चलो यशोदा मैया बना दो कुछ राय प्रसाद में जा रहा हूँ अभी। भगवान ने उनको रोका ऑफकोर्स, और गंगा जी को प्रकट किया ब्रज में गोवर्धन के बीच में। ये गंगा जी का महिमा है। तो क्या बताया शास्त्र में कि जो गंगा जी को स्पर्श करता है उसका दिव्य रूप प्राप्त हो जाता है जीवन के अंत में। हाँ, ऑन द स्पॉट नहीं, वो सांप को बेचारे को हो गया, वो भाग्यवान था। हम लोगों को जैसा हम स्पर्श गंगा जी का करते हैं तो उससे वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मतलब एक दिन बनेगा, ऐसा एक प्रूफ मिल जाता है। गंगा जी को जो केवल प्रेम से देखता है, सब लोग सुन रहे हैं ना, गंगा जी को जो केवल प्रेम से देखता है उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। केवल गंगा जी के बारे में विचार करने से, गंगा जी को स्पर्श करने से, गंगा जी को देखने से, गंगा जी में स्नान करने से, इनमें से किसी भी कृति को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहाँ हो जाते हैं, मायापुर नवद्वीप धाम के बाहर। गंगोत्री से जब निकलती है वो निर्माण होकर पृथ्वी पर गंगोत्री के रूप से आती है। जब तक वहाँ से मायापुर के अंदर प्रवेश नहीं करती है तब तक आप गंगा जी को स्पर्श करेंगे, देखेंगे, स्नान करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो मायापुर क्षेत्र में नवद्वीप धाम में प्रवेश करती है अपनी 16 बहनों के साथ में, उसके बाद में जब आप उसको देखते हो, उसको स्पर्श करते हो, उसका आचमन करते हो, उसमें स्नान करते हो, उसके बारे में विचार करते हो, या उसको पुकारते हो, गंगा गंगा पुकारो, और एक बार पुकारो, प्रेम से पुकारो, तो इसका फल क्या गया है, आपको गौरांग महाप्रभु का कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और आप अगर 10,000 योजन यानी कि 80,000 माइल्स अगर भी यहाँ से दूर रहोगे, यानी कि अमेरिका या टिम्बकटू में रहेंगे समझो, और वहाँ पर बोलेंगे गंगा गंगा, वैसा करने से भी आपको इस जीवन के अंत में दिव्य स्वरूप प्राप्त होकर गोलोक धाम में प्रवेश मिलेगा। इसे नारद पुराण में कहा गया है, इतना महात्मा है गंगा का। तो फर्क क्या हुआ, नवद्वीप धाम के बाहर जय भी गंगा जी बहती है वो तीर्थ बन जाता है, वहाँ पर जो रहते हैं वो सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो नवद्वीप धाम में आती है वो पुण्य को भी नष्ट कर देती है, पाप को भी नष्ट कर देती है, और प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे देती है। अभी आप बोलेंगे पुण्य पुण्य भी नष्ट हो जाएगा क्या? प्रभुपाद जी एक बार जमुना जी में स्नान कर रहे थे केशी घाट पे, वो थोड़े बड़े बूढ़े थे तो थोड़ा सा धीरे धीरे कपड़े निकाल रहे थे, और जवान भक्त थे फटाफट निकाल के जमुना जी में कूद गए। तो वो जमुना जी में कूद के ऑलरेडी स्नान करने लगे तो प्रभुपाद जी ने कपड़े उतारते उतारते कहा, बाय टेकिंग बाथ इन जमुना ऑल द सिंस ऑल द पुण्य इज डिस्ट्रॉयड। तो कुछ लोग वापस भाग के आए, बोले पाप के साथ पुण्य भी जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको समझाया कि आप लोगों को लगता है कि पाप नष्ट होने चाहिए, पाप बहुत खराब चीज़ है, पाप के करने के द्वारा पाप की वजह से दुख प्राप्त होता है, लेकिन पाप से खतरनाक पुण्य होता है। कितने लोग मानते हैं इसको, देखो कुछ ही हाथ ऊपर है, लेकिन आज के बाद सारे हाथ ऊपर हो जाएंगे। क्यों, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि पुण्य जो होता है ना वो पुण्य करने से आपका जन्म स्वर्ग में होता है, आपको एक बहुत सुगंधित शरीर प्राप्त होता है। अभी कोई बदबू वाला मुंह से नाक से कान से सब जगह से बदबू आती रहती है, मल मूत्र बहता रहता है, ज़्यादा कुछ अट्रैक्टिव शरीर नहीं है। स्वर्ग में शरीर जो होता है ना उसमें पसीना नहीं आता है, और आएगा तो उसमें खुशबू आती है, मल मूत्र नहीं होता है। स्वर्ग लोक में टॉयलेट नहीं होता है, नाले नहीं होते हैं, गंदे नाले, नो टॉयलेट नो गंदगी नो टॉयलेट्स नो ब्लैडर एंड रेक्टम इन द सेलेस्टियल बॉडी। और वहाँ पर जाकर आपको दिव्य आनंद मिलते हैं, मतलब दिव्य नहीं मिलते हैं, मतलब बहुत उच्च आनंद। दिव्य तो मतलब जन्म मृत्यु से रिहा करने वाले आनंद को दिव्य कहते हैं, लेकिन ये जो आनंद मिलता है वो बहुत अतिंद्रिय आनंद कहते हैं उसको, बियॉन्ड इमेजिनेशन। सोमरस पीने से इतनी शक्ति आती है इंद्रों को भोग लेने की कि आप अनंत भोग ले सकते हैं। अप्सराएं आप संग करेंगे तो आपको वेश्यागमन करने का पाप लगेगा नहीं, देयर इज नो सिन ऑफ इलिसिट सेक्स, जस्ट एन्जॉय एन्जॉय एंड एन्जॉय। नंदन वन में जो फूल खिलते हैं वो सूखते नहीं है, सोच सकते हैं आप, फूल खाली कली बनकर खिल जाते हैं और सूखते नहीं, खिले रहते हैं, मतलब एक नया आया वो खिल गया, वो खिला ही रह गया। इसलिए वो क्या करते हैं मालूम है ना, कोई भगवान कृष्ण एक राक्षस का वध करे तो पुष्प वृष्टि कर देते हैं, इतने एक्स्ट्रा फूल है सब लोग आके पुष्पवृष्टि करते हैं। राम भगवान ने रावण का वध किया, पुष्पवृष्टि किया। राम का जन्म हुआ, पुष्पवृष्टि हुआ। राम का उपनयन संस्कार हुआ, पुष्पवृष्टि हुआ। शादी हो गया तो बहुत सारी पुष्पवृष्टि हो गई, क्योंकि इतने सारे फूल है वहाँ पर। ऐसे ऐसे व्यंजन हैं, ऐसे ऐसे सौंदर्य है, ऐसे ऐसे आयु, लाखों साल की आयु है। इतना उच्च प्रति का आनंद वहाँ मिलता है। लेकिन 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 क्षणे पुण्य मर्त लोके विशंति, वहाँ तक, वहाँ तब तक आप रह सकते हो जब तक आपका पुण्य का अकाउंट है। आपका हवाई जहाज आकाश में तब तक उड़ सकता है जब तक उसमें पेट्रोल है, और एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोल समाप्त हो जाएगा और आकाश में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता है, उसके लिए जमीन पे आना पड़ता है। तो क्षणे पुण्य मर्ते लोके विशंति, जब वो पुण्य का अकाउंट समाप्त होता है तो दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है। और पृथ्वी पर एक टाइप का आनंद अवेलेबल है, बदबू वाली बॉडी अवेलेबल है, हाँ छोटी सी आयु अवेलेबल है, छोटा सा दिमाग अवेलेबल है, सुंदरता इतनी है ही नहीं। तो वहाँ पर उच्च आनंद प्राप्त करने के बाद में यहाँ पर तकलीफ होती है। कैसा समझो, आप अभी बहुत गरीब थे पहले, एक चाल में रहते थे, एक कमरे में 10x12, लैट्रिन बाहर था। फिर पढ़े लिखे और बड़े हो गए थोड़ा सा, तो फ्लैट ले लिया, फिर 2 बेडरूम का फ्लैट लिया, फिर 4 बेडरूम का लिया, फिर अपना प्लॉट लेके बंगला बांधा, और फिर एक दिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया और आप राजा के रंक हो गए, और फिर 1 रूम किचन में आ गए। अभी क्या फ़र्क है बताओ, जिसमें आपने 25 साल रह चुके हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं, क्या उसमें रह चुके पहले आप, ऐसा होता है क्या? नहीं प्रभु जी, नहीं होता है। एक बार 25 साल तक वहाँ रहे आप, लेकिन उसके आगे वाले जगह पर गए ना और वो छूट गया, वापस आने में बहुत तकलीफ होती है। वहाँ पर मीरा रोड में आप 10 साल रह चुके हो, फिर आपका गल्फ में जॉब हो गया, फिर वहाँ पर आपने 4, 5, 6 साल, 3 साल कॉन्ट्रैक्ट किए, जब लौट के आएंगे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके बोलेंगे ये कौन चढ़ेगा मीरा रोड के ट्रेन में, इतनी भीड़ में, इतने पसीने में कौन चढ़ेगा यहाँ पर, हम नहीं रह सकते यहाँ पर जहाँ रह चुके हैं पहले। तो ये कहानी किसकी है? पुण्य की कहानी है। पुण्य होने की वजह से हम लोग बिगड़ जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता है, फिर हम लोग यहाँ पर बहुत कष्ट। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि पाप से अधिक पुण्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि पुण्य से स्वर्ग लोक में जाने के बाद में भगवान की याद नहीं आती, वहाँ पर इतना भोग है, इतना भोग है। इंद्र भी बेचारा भूल जाता है, महाविष्णु की माला आती है, महाप्रसादी दुर्वासा मुनि के द्वारा तो उसको प्राप्त होती है, तो वो हाथी के पैर में देता है उसको, इतना मग्न है अप्सराओं का नाच देखने में, भगवान की याद नहीं आती है। और पाप अच्छे क्यों हैं? जब पाप करने से दुख होते हैं तो भगवान की याद आती है, हे भगवान कब मुक्त करेंगे मुझे आप, इतना दुख में मैं जल रहा हूँ। तो एक तरह से पाप अच्छे होते हैं, पुण्य अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग पुण्य के पीछे भागते हैं और पाप को डरते हैं। इसलिए कहते हैं कि गंगा देवी जब आप उसको स्पर्श करते हैं तो आपके पुण्यों को भी और पापों को भी नष्ट कर देती है। उससे क्या होता है, एक अच्छी बात होती है, उससे आप भक्ति के लिए योग्य बन जाते हो, तुरंत भगवान की दिव्य कृपा आप पर तुरंत होने योग्य हो जाती है, आप उसके योग्य बन जाते हो। तो ऐसे गंगा का महिमा है। तो नवद्वीप में गंगा जी कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। तो यहाँ पर 16 नदियों का नाम बताता हूँ मैं, कौन सी नदियाँ जिसके संग में आप रहोगे, शायद दर्शन नहीं होगा सबका आपको, लेकिन दर्शन संग में आप यहाँ रहोगे, उनके सानिध्य में रहोगे। एक है गंगा और जमुना, जिसके बीच में ये अंतर्द्वीप बना हुआ है। तीसरा सरस्वती, चौथी ताम्रपर्णी, कृतमाला, ब्रह्मपुत्रा, सरयू, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोमती और गोदावरी, जलांगी, ऐसे अनेक नदियाँ हैं, इनका संग यहाँ पर उपलब्ध है। वो हर एक प्रवाह जो है कोई हरे रंग का है, कोई सब कोई लाइट रंग का है स्फटिक जैसा, कोई ब्लू रंग का है, ऐसे अलग अलग। आपको आप जब जाएंगे ना गोद्रुम द्वीप में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, वो डार्क कलर और लाइट कलर एक जगह मिल रहा है। ऐसे सब नदियों का संगम होता है और फिर द्वीप तैयार होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर बहुत दिव्य संग दिया है जमुना गंगा जी को। अपने बाल्यकाल में कई घंटे हर रोज उन्होंने गंगा जी के किनारे में बिताए हैं और गंगा जी के अंदर भी बिताए हैं। बालक रूप में बहुत छलांग लगाते थे, कई घंटे मस्ती करते थे पानी में। साधु लोग जब जप करते थे ना तो जल के अंदर से जाकर, अंडर वाटर जाकर, उनके नीचे से जाकर उनके पैरों को पकड़ कर उनको उल्टा फेंकते थे, बालक के रूप में। फिर सब लोग ऐसे साधु लोग ध्यान कर रहे हैं, तो उनके अंडर वाटर जाकर ऐसे जल से अंदर जाकर मुंह में पानी लेकर उनके मुंह में पिचकारे मारते थे, उनका गायत्री मंत्र भंग करते थे, अशुद्ध करते थे उनको। फिर जब बड़े हो गए, व्याकरण के पंडित बन गए, तो अपनी जो पाठशाला थी व्याकरण की वो भी गंगा किनारे उन्होंने की। उसके बाद में जवान लड़कियों को चिढ़ाते थे, वो सब अच्छा पति प्राप्त करने के लिए कड़वा चौथ का व्रत करने के लिए जा रहे हैं गंगा जी किनारे, उनको रोकते थे, वो कहते मैरी मी, मैं आपका पति बनने योग्य हूँ। तो बड़ा वो संकोच में आते थे, कैसा लड़का है, शर्म नहीं कुछ नहीं, हम जा रहे हैं पति के लिए प्रार्थना करने के लिए और ये कह रहे हैं मेरे पत्नी बनो। तो सारे उनकी भोग की मिठाई खुद खा लेते थे और बोलते थे अगर मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो 7 शादियाँ जिसकी हो गई है ऐसे बुढ़े से शादी आपकी होगी। यू विल मैरी विथ अ ओल्ड मैन हु हैज मैरिड 7 टाइम्स एंड हु ऑलरेडी हैज एग्जिस्टिंग 7 वाइव्स। और जब भी निमाई पंडित गंगा जी में प्रवेश करते थे तो शांत बहने वाली गंगा जो है वो समुद्र की तरह लहरों की तरह उछलती थी और सब लोग आश्चर्य करते थे क्या हो गया। उसके अंदर जाकर गौरांग महाप्रभु बचपन में वो मगरमच्छ को पकड़ते थे, उसके साथ में खेलते थे, तो माता पिता चिल्लाते थे अरे निमाई क्या कर रहे हो, तो वो उनके साथ खिलौने की तरह खेलते थे। जब चाहे बोलते आ जाओ तो मगरमच्छ किनारे पे आते थे, चले जाओ तो पानी चले जाते थे। ऐसे अद्भुत लीला यहाँ पर की भगवान ने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में 24 साल बिताए, श्री गौरांग महाप्रभु का जीवन काल 48 साल का था, उसमें 24 साल उन्होंने नवद्वीप धाम में बिताए। मतलब बाल्यकाल से लेकर युवावस्था से लेकर विवाह हुआ उनका, 2 विवाह हुए और संन्यास लिया 24 साल की उम्र में, तब तक उन्होंने यहाँ लीला किया। अगले वाले 6 साल भारत भर का भ्रमण किया उन्होंने सन्यासी होकर, और बचे हुए 18 साल उन्होंने कहाँ बिताए, जगन्नाथपुरी में बिताए, अति उत्कट विरह में बिताए। इस तरह से अपने जीवन काल के 48 साल में से 24 साल उन्होंने यहाँ बिताए। तभी हम थोड़ा अपने कथा को विश्राम देते हैं, थोड़ा कीर्तन करते हैं, फिर आगे कथा बढ़ाते हैं।